يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارا رب پاک ہے. پاک سے مطلب آپ کو سمجھ آ گئی نا، آپ سبحان جب کہتے ہیں پاک ہے تو عام میننگ میں لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا پورا میننگ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ سبحان کا مطلب ہے ہر عیب اور نقص سے پاک، یعنی جس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اور نمبر ٹو کہ اس کے اندر تمام جو خوبیاں ہیں ان کا کمال اس کے اندر ہے، ان کی پیک اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا رب پاک ہے. ان کہنا وعد ربنا لمفعولا، بے شک اس ہمارے رب کا وعدہ ہو کے رہنے والا ہے، یعنی جو بھی اس نے وعدے کیے ہیں، جتنے بھی وعدے کیے ہیں سارے ہی پورے ہو کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ قیامت کا وعدہ ہے، چاہے وہ ایمان والوں کا جنت میں داخل ہونے کا وعدہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی وعدے ہیں. اور یہ بھی سب سے بڑا وعدہ ہے ان کی جو کتابوں میں تھا، کہ جو وہ پڑھتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا نا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، يَبْكُونَ روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے بڑھا دیتا یہ ان کی عاجزی کو. دوبارہ یہ بات دہرائی کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آئی ہے ان کی یہ ادا، ان کی یہ بات، کہ ایسے لوگ قرآن کو سن کے دیکھیں کیسے گر پڑتے ہیں سجدوں میں اور روتے ہوئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ جب قرآن کو پڑھو تو رو، یعنی قرآن کو جو دھیان سے پڑھیں گے، رونا تلاوت سے تو نہیں صرف آتا نا، تو فرمایا قرآن کی تلاوت کرو اور رو، اور رونا نہ آئے تو کوشش کرو کہ رو پڑھو. جب قرآن پاک پڑھیں تو اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. تو پہلا سجدہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اور شکرانے کا تھا، اور یہ والا سجدہ دیکھیں پہلے بھی ہے نا، سجدن 107 میں بھی ہے اور اس آیت میں بھی ہے کہ وہ گر پڑتے ٹھوڑے. تو دو کیوں ہیں، ایک شکرانے کا ہے اور ایک سجدہ قرآن کو سن کے جب رقت طاری ہوتی ہے انسان سجدے میں چلا جاتا ہے. تو جب انسان واقعی دل سے پڑھتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے جیسے حضرت اکرمہ رو پڑھتے تھے نا، کہتے تھے میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام. اور واقعی جن لوگوں کو، جو اہل کتاب لوگ ہیں، جب جو واقعی حق والے لوگ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام تھے، جیسے آپ کو پتا ہے ورقہ بن نوفل، سب سے پہلے تو ورقہ بن نوفل تھے، ورقہ بن نوفل جن کے پاس حضرت خدیجہ لے کے گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے پہچان لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء پہ آیا، اور اگر میں زندہ ہوں اس وقت تک جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا. تو ان کو حق پتہ چل گیا تھا. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی جو اہل کتاب، جیسے حضرت صفیہ تھی، وہ بھی جان گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے قبیلے سے تھی. نجاشی دیکھیں عیسائی تھا، رو پڑا تھا جب اس نے سنا تھا حضرت جعفر سے، جب آیات سنی تھی سورہ مریم کی. تو ایک تو فزیکلی بھی جھک جانا، اور ایک قرآن کو سن کے انسان کے دل کو جھک جانا چاہیے کہ اللہ کی بات ہے، میں اس کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. انسان آگے اپنی انتہائی، دیکھیں سجدہ کیا ہے، انتہائی ذلت کا ایک اظہار ہے کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں، میں اپنے ماتھے کو اپنے رب کے آگے رکھ دوں. انسان اس سے زیادہ نیچے گر نہیں سکتا جتنا وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو کیا فزیکل صرف سجدہ ہے یا پھر اندر بھی سجدہ کرے انسان کا اندر، انسان کی عقل سمجھ، جب آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا تو آپ نے اپنی عقل اللہ کے آگے سجدے میں ڈال دی. پھر بھی اگر یہ کہنا میری عقل تو یہ کہتی ہے، میری سمجھ تو یہ کہتی ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں. کسی نے پچھلے دنوں اتنی اس بات کے اوپر وہ مضر تھی کہ میری سمجھ یہ کہتی ہے، مجھے بڑی سمجھ ہے، میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ پردہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا دل کا پردہ ہوتا ہے اور آپ کو پردے کی ضرورت نہیں ہے. تو देखो आज हमने अपनी अकलों को किधर बिठाया हुआ, इतनी ऊपर। वैसे हम जमीन पे सजदे कर रहे हैं लेकिन हमारी अकल सजदा नहीं करती। जब हम अपनी अकल को अल्लाह के आगे बड़ा समझते, अल्लाह की बात के आगे, मैं ये समझती हूँ मैं क्या चीज है। तो लिहाजा इंसान वैसे भी सजदे में जाए और अपनी अकल समझ को भी अल्लाह ताला के आगे गिरा दे, बिछा दे। और ये देखें हदीस में आता है कि जब आदमी सजदे की आयत पढ़ के सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ जुदा होता है और कहता है हाय खराबी, इंसान को सजदे का हुक्म हुआ, इसने सजदा कर लिया, जन्नत में जाएगा, और मुझे सजदे का हुक्म हुआ, मैंने इनकार। तो जो कुरान पाक में आयतें सजदा आती है, जैसे ये आयत है, तो इंसान जब इसकी तिलावत सुने तो फिर वो सजदे में चला जाए। और उसमें सजदे की जो आयतें सजदा है उनकी दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, सजद वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक्क़ा सम्अहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो अगर ये ना आती हो तो इंसान फिर वैसे सुबहाना रब्बियल आला पढ़ ले, लेकिन ये दुआ याद करने को कोशिश करें आप। कुरान करीम में तकरीबन 14 आयात सजदे की, तो आप देखें ये वाली आयत भी जो है ना, इतनी ज्यादा इसके अंदर वाकई अपने आप को गिरा देने वाली बात है कि मेरे चेहरे ने उस हस्ती को सजदा किया जिसने अपनी कुदरत और ताकत से इसको बनाया है, इसकी समाअत को बसारत को बनाया है अपनी कुदरत ताकत से, वो सबसे बेहतरीन तखलीक करने वाला। तो ये मौका इस मौके पर अहले किताब जब समझ जाते तो वो सजदे में चले जाते। तो जब वाकई इंसान अल्लाह ताला को पहचान लेता है ना, तो वाकई उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो झुक जाता है अपने रब के आगे। और हदीस में है, जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोया, जो अल्लाह ताला के खौफ से रोया अपनी बातों के ऊपर नहीं, किसी ने दुख दिया उस पे नहीं, या अपने किसी कोई चीज नहीं मुझे हासिल हुई, या किसी ने मुझे सताया, या किसी ने मुझे हर्टफुल बात की उस पे नहीं, या कोई बात याद आ गई उस पे नहीं, बल्कि जो अल्लाह के खौफ से रोया, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो उसको दोजख में दाखिल नहीं करेगा, यहां तक कि दूध थनों में वापस चला जाए। दूध भी कभी जो निकाला हुआ दूध होता है कभी थन में वापस जा सकता है? नहीं जा सकता ना। तो जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोने वाला है, एक दूसरी हदीस में आता है उसको अल्लाह ताला निजात अता फरमाएगा, तिरमिजी की जो हदीस, और इस हदीस में कि अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में दाखिल नहीं करेगा, उसका जहन्नुम में जाना इतना ही मुश्किल है जितना थनों में दूध का वापस चले जाना। तो वाकई अगर इंसान को कुरान पाक का इल्म हो तो उसके ऊपर कुरान असर करता है, लेकिन ये तभी होगा ना जब हमें समझ आ रही होगी, तभी रिक्कत भी तारी होती है, तभी अल्लाह की बड़ाई का एहसास भी होता है, तभी जहन्नुम का पढ़ के इंसान रोता है, तभी अल्लाह के खौफ से रोता है, कभी अल्लाह की नेमतों का सुन के रोना आ जाता है, कभी अल्लाह की मोहब्बत का सुन के रोना आ जाता है, कभी अल्लाह ताला के बड़ाई इंसान पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। तो ये तब होता है जब इंसान समझ के पढ़ रहा होता है। और ये जो हम खत्म करते हैं एक के बाद एक कुरान, एक के बाद एक, और बस जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं, ये समझ के बगैर है जब, तो फिर रोना कैसे आएगा, खुद सोचें। तो ये एक रोना ऐसा है जो हमें जहन्नुम से आजादी दिला सकता है। बाकी सारे रोने जो हैं फिल्में देख के रोना, ऐसा कोई सीन देख लिया अब उसमें रो रो के हलकान है, या वैसे ही अब शौहर ने कोई डांट लगा दी तो उसके ऊपर हाय वाय करके रो रहे हैं, या बच्चा जरा सा उसको कुछ हो गया हाय हाय बस वो हाय हाय हो रही है उस पर रो रहे हैं। ये चीजें नहीं है जिसके ऊपर कोई जहन्नुम से आजादी की इतनी कोई बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करें जो खुशू और खुजू रखने वाले हैं, और जो अल्लाह ताला की आयात पढ़ के सुन के समझ के रोने वाले, अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास जिनके दिलों में इतना हो। कुले दुअल्लाह अवे दुअर्रहमान, कह दीजिए तुम चाहे अल्लाह पुकारो चाहे रहमान पुकारो, अय्यम्मा तदाउ, जो भी तुम जो भी नाम लेके पुकारोगे, फलाहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए सारे ही अच्छे अच्छे नाम है। ये क्यों कहा गया अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो? दरअसल कुफारे मक्का जो थे वो अल्लाह का नाम जानते थे मानते थे, लेकिन रहमान को नहीं मानते थे, इस नाम को वो जानते ही नहीं थे। वो कहते थे ये क्या नाम है, आप खुद तो हमें कहते हैं खुदा को मानो और आप दो दो खुदाओं का नाम ले रहे हैं। तो नहीं, अल्लाह भी वही है रहमान भी वही है। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, आप सज्दे में कह रहे थे या रहमान या रहीम, तो मुशरिकीन ने कहा कि मोहम्मद लोगों को सिर्फ एक खुदा की तरफ दावत देते हैं, देखो जी खुद अब दो दो खुदाओं को पुकार रहे। तो बता दिया गया कि नहीं, ये अल्लाह तआला के और अल्लाह के सारे ही अच्छे नाम अल्लाह के ही हैं, ठीक है तुम जिससे भी पुकारो, लेकिन खास तौर पर ये जो दो नाम है ना अल्लाह और रहमान, ये नाम किसी को भी नहीं रखने हैं। और ना अल्लाह नाम किसी ने नहीं अपना आज तक रखा, लेकिन बाज लोग रहमान नाम रख लेते हैं, ये भी नाम खास अल्लाह ताला के लिए। आप अब्दुल रहमान रख सकते हैं, रहमान नहीं रख सकते, ठीक है? और ना ही किसी को कहना चाहिए रहमान साहब, नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, अब्दुल रहमान कहे, क्योंकि कोई रहमान नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला के इन नामों के साथ अल्लाह ताला से दुआएं करें, या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस तरह कह के दुआ करनी चाहिए, जैसे इस हदीस से भी मैंने आपको बताया। और ये भी कि और भी जो अस्माए हुस्ना है वो सारे अल्लाह ताला के अच्छे नाम है, और उनसे भी अल्लाह ताला को पुकारा जा सकता है, या रज़ाक या फत्ताह या आलीम या समी या बसीर या वदूद। तो ये अल्लाह ताला के नाम है, आप देखें इन नामों के इतने प्यारे प्यारे ये अल्लाह ताला के नाम है। हम खुद अल्लाह ताला को कोई नाम नहीं दे सकते, ये जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हैं वो ही उसके नाम है, या तो कुरान में है या हदीस में है या अल्लाह ताला के और नाम है जो उनका अल्लाह ताला को ही बस पता है, हमें नहीं पता है। क्योंकि एक दुआ में आता है मसनून दुआ में, है अल्लाह वो नाम जो तेरे पास है तुझे उनका पता है, ठीक है? तो अल्लाह ताला के जो 99 नाम याद कर लेता है, यानी इतनी उससे उन नामों से मोहब्बत है, उनको समझता है, उनको याद करता है, उनके ऊपर यकीन रखता है ना, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। यह हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जो 99 नामों को याद कर ले, और याद से मतलब सिर्फ हिफ्ज करना नहीं है, समझना भी और उनको ऊपर ईमान रखना भी, तो अल्लाह ताला उसको इंसान को जन्नत में दाखिल करेगा। लिहाजा इन नामों को याद करना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, और 99 से भी ज्यादा है, सिर्फ 99 नहीं है, लेकिन 99 नामों को कोई याद कर लेगा, जितने हमें पता है उनमें से भी 99 याद कर लेंगे, तो भी ये आपके लिए हदीस पूरी हो सकती है। और देखिए एक बात ये कि अल्लाह ताला के लिए अस्मा उल हुस्ना है, हुस्ना अच्छे नाम। अब कोई नाम हम अल्लाह ताला को देते हैं, अगर हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह जल्ले जलालहू, इस तरह जब हम कहते हैं तो ये भी अल्लाह ताला के इस तरह से भी कुरान पाक में भी आता है और हदीस में भी आता है, तो इस तरह से भी कहना सही है, अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ये कहना भी सही है। लेकिन ये कहना अल्लाह मियाँ, ये नोट करें इस बात को, मेरी बात को जरा इस वक्त तवज्जो से सुने, अल्लाह मियाँ ये कहना सही नहीं है। मियाँ आप किसको कहते हैं? किसी बड़े को कह देते थे मियाँ जी, या फिर शोहर को मेरे मियाँ, तो अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, ये अल्लाह ताला की शान के लायक लफ्ज़ नहीं है, इस लफ्ज़ को ना बोला करें, अल्लाह ताला कह लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह लें, आप अल्लाह सुबहाना हुआ ताला कह दें, तो लेकिन ये लफ्ज़ ना बोले, ये हमारी अपनी जुबान का एक लफ्ज़ है जिसमें कमी है नक्स है, नफ्स वाला कोई लफ्ज अल्लाह ताला के लिए हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप आपने नोट करना है, अपने घर में भी बताना है, और इस चीज को छोड़ देना है। अगर ये जुबान पे चढ़ा भी हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको छोड़े। वला तजहर भी सलाती का, वला तो खौफित भी है, वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, और ना अपनी नमाज को बहुत पस्त करो, ना ना बहुत अपनी नमाज को बुलंद करो, ना पस्त करो, बल्कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते थे, या जहरी नमाजें पढ़ाते तो बुलंद आवाज से पढ़ते, तो मुशरिकीन कुरान को और अल्लाह ताला को बुरा भला कहते थे, और अल्लाह माफ करे अस्तगफिरुल्लाह गालियां देते थे, मजाक उड़ाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पस्त आवाज से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि आपके सहाबा को भी सुनाई नहीं देता था। तो ये आयत नाजिल हुई थी, ये बुखारी और मुस्लिम में भी ये बात है। और दूसरी एक और रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो सुना कि अबू बकर सिद्दीक जब कुरान पढ़ रहे हैं तो बहुत हल्की आवाज में पढ़ते हैं, और हजरत उमर जब पढ़ रहे थे तो बहुत बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे। तो पूछा कि आप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आप क्यों इतनी पस्त आवाज में पढ़ते हैं, इतना हल्की आवाज में क्यों? तो फरमाया, मैं अपने रब से सरगोशियां करता हूँ, उसको मेरी हाजत का इल्म है। तो उनसे कहा गया कि आप अच्छा करते हैं, और हजरत उमर से कहा गया आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, मैं शैतान को भगाता हूँ और सोए हुए लोगों को जगाता हूँ, इसलिए मैं ऊंची आवाज में पढ़ता हूँ। तो उनसे भी कहा गया आप अच्छा करते हैं। तो जब ये आयत नाजिल हुई, तो अब ये है कि अब ना बहुत बुलंद ना बहुत पस्त। तो अबू बकर सिद्दीक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि आप कुछ थोड़ा सा ऊंचा कर लें, और हजरत उमर से कहा गया कि आप थोड़ा सा कम कर लें। तो ये एक बात इसके अंदर हमें पता चलती है। तो वैसे जो सलात का लफ्ज है, आपको पता है ये इसका मतलब क्या होता है? सलात का मतलब होता है नमाज भी और दुआ भी, और दुआए रहमत भी। इसीलिए कहा गया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम जब सलात भेजते हैं तो क्या है, रहमत की दुआ करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब हम ये सलात का लफ्ज बोलते हैं आपके लिए, तो दुआए रहमत कहते हैं। दरूद पढ़ना जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए रहमत करना है, वो सलात है आपके लिए। आपके लिए हम सलात भेज रहे हैं, यानी दुआए रहमत कर रहे हैं। और वैसे भी दुआ को सलात कहते हैं, यानी आप अपनी दुआएं भी ना तो इतनी बुलंद करें, चीख चीख के दुआएं कर रहे हैं, ना इतनी पस्त करें। तो दुआ का भी एक दरमियाना होना चाहिए, सब चीजों के अंदर मियाना रवि, एतदाल, दरमियाने रास्ते को पसंद किया गया। तो दुआ में भी ऐसा करना चाहिए। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला दिलों के हाल तक जानता है, और इंसान सोचे मैंने अब बोल के क्या करना है, अल्लाह ताला को तो पहले ही पता है कि मेरी क्या हाजत है। तो बेशक उसको दिल का हाल मालूम है, पहले से पता है, मगर वो चाहता है कि आप बोलें, वो मांगने को पसंद करता है। ठीक है, इसलिए आप मांगे, बोल के बताएं। बल्कि हदीस में आता है, जो अल्लाह ताला से मांगता नहीं है अल्लाह ताला उससे नाराज होता है, और दुनिया वाले मांगने वालों से नाराज होते हैं। तो दुआ में भी तवाज़ुन, नमाज में भी ना तो बुलंद आवाज से, ना बिल्कुल ही पस्त जब किसी को जमात करा रहे हैं। और वैसे भी जब हमारी नमाज होती है ना, तो कोशिश करें कि बस इतनी हल्की आवाज हो कि आपके अपने कान सुन लें, ताकि आप अलर्ट रहें। ठीक है, इतनी सी हल्की आवाज में आप पढ़ सकते हैं नमाज। वकुल अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये एंड इस सूरत का आखिरी आयत, और जबरदस्त आयत, इतनी जबरदस्त आयत है ये कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयते इज्जा है, इज्जत वाली आयत है। ठीक है, यानी कितनी, जाहिर है बहुत बड़ा मकाम है इस आयत का, और कुव्वत वाली आयत, इज्जा का मतलब ये भी कुव्वत वाली आयत है। और इस आयत का को इब्ने कसीर ने इस आयत के बारे में ये भी लिखा है कि इस आयत को जो कोई इंसान पढ़ता है रात में, घर में अगर ये रात में पढ़ी जाए तो इस घर में कोई आफत नहीं आती, कोई चोरी नहीं हो सकती जो इस आयत को पढ़ ले। और इब्ने कसीर लिखते हैं कि अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के छोटे बड़े लोगों को ये आयत सिखाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आयतुल अज़ यानी इज्जत वाली आयत, ये इसका नाम रखा था। और ये भी हमें मिलता है कि बाज मुफसरीन ने ये लिखा है कि ये आयत सूरह इखलास के मुशाबे है, इसलिए इसकी इतनी अहमियत है, क्योंकि सूरह इखलास में भी यही बातें, अभी हम आयत देखेंगे ना, तो यही बातें हैं, बस अल्फाज मुख्तलिफ हैं। तो उसमें भी अल्लाह की तौहीद का जिक्र है और शिर्क से अल्लाह ताला को बुलंद करार दिया गया, इसमें भी ऐसे ही है। तो इसी वजह से देखें, ये सूरह इखलास भी तो आप देखें ना, 1/3 कुरान के बराबर है, और ये आयत में उसी किस्म की सिफात मौजूद है, तो इस आयत की भी अहमियत इतनी ज्यादा है, ठीक है। और फिर ये कि ये आयत, जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ जो हमारे असलाफ थे वो बच्चों को ये आयत याद करवा देते थे, और ये समझा जाता था कि सोने वक़्त पढ़ने से आफतों से निजात मिलेगी। तो मैंने जैसे आपको पहले भी ये बात बताई है कि कुछ बातें तजर्बात से आई हैं, जैसे बड़े बड़े फुकहा मुहद्दिसीन, ये जैसे इब्ने कसीर ने ये बात लिखी है, और बड़े बड़े आइम्मा कराम, उन्होंने अपने तजर्बे किए कोई कुरान में कि ये वाली आयत पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ, ऐसा पढ़ने से ऐसा हुआ। तो अगर वो सुन्नत में नहीं भी है, तो जैसे हमने पहले बात की थी कि शिफा हासिल हो गई या रहमत है, तो इस को फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। इब्ने कसीर कोई छोटी शख्सियत नहीं है, वो और ये भी इस बात की रोशनी में कि अल्लाह ताला ने इसको शिफा करार दिया और इसको रहमत करार दिया, ठीक है। तो जब अल्लाह ताला ने इसको शिफा और रहमत करार दे दिया, तो कहीं से भी पढ़ लेंगे तो शिफा है इसके अंदर, रहमत है इसके अंदर, जिस्मानी भी और रूहानी बीमारियों के, ठीक है। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो ज़रूर हैं, वो तो उनकी अहमियत कम नहीं है, वो ही तो सबसे ज़्यादा अहम है, लेकिन उसके अलावा भी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो वकुल अल्हम्दुलिल्लाह, और कह दीजिए तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, हम्द वो तारीफ जिसमें शुक्राने के जज्बात हों, और शुक्राना नेमत पे होता है, और नेमतें हमारे पास कितनी है बेहिसाब, जो गिनी नहीं जा सकती, ठीक है। तो जब गिनी नहीं जा सकती तो शुक्र कैसे फिर अदा होगा। इमाम कुर्तुबी इस बारे में लिखते हैं कि अल्लाह ताला की जो बेशुमार नेमतें, उनका शुक्र तो अदा हो ही नहीं सकता, और नेमतों को जब गिना ही नहीं जा सकता तो शुक्र कैसे करेंगे। तो ऐसे लगता है कि तो शुक्र तो फिर कभी मैं कर ही नहीं सकती, लेकिन शुक्र करना वाजिब भी है, ज़रूरी है, तो क्या करें फिर। तो इमाम कुर्तुबी कहते हैं अल्लाह ताला ने एक कलमा ऐसा बनाया है कि अगर सारे जहान की सारी नेमतें, जो भी जितनी भी नेमतें हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, अगर उन सारी नेमतों को एक लुकमा बना दिया जाए और इंसान वो लुकमा उठा के अपने मुंह में डाल ले और हलक से उतार ले, तो यानी सारी नेमतें एक दफा में ही उसने हासिल कर ली, यूज कर ली, तो एक कलमा अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि इंसान वो दिल से अदा कर दे ना, एहसास के साथ समझ के, तो शुक्र अदा हो जाता है। और वो कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन कलमा, कलमा शुक्र जो है ना, बेहतरीन कलमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला को आपने ये नहीं कहना थैंक यू, ये नहीं कहना, और हम एक दूसरे को तो कहते हैं जज़ाकअल्लाह खैर, ये तो अल्लाह को तो नहीं कहना, अल्लाह ताला को क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, वो कैसे दुआ हो गई, वो तो इसमें तो दुआ की बात ही नहीं है, कैसे हुई फिर दुआ। असल में जब आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला और नेमतें अता फरमाता है, और जो पहली नेमत है उसको भी जवाल से महफूज कर देता है, तो फिर कितनी अच्छी दुआ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ए नबी आप कह दें अल्हम्दुलिल्लाह तो ये सिर्फ जिक्र नहीं है, ये दुआ भी है जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहते हैं। और ये किसी और के लिए नहीं है, अल्हम्द जो है वो सिर्फ लिल्लाह है, ली अल्लाह के, अल्लदी वो अल्लाह, लम यत्तखिद वलादा, जिसने नहीं बनाया कोई बेटा कोई बच्चा, यानी वो किसी का मोहताज नहीं है, उसको औलाद की जरूरत नहीं, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और कोई उसकी बादशाहत में शरीक नहीं है। जितने भी दुनिया में पूजे जाते हैं खुदा बना के, वो चाहे कोई फरिश्ता हो, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई बुत हो, चाहे कोई राम सीता फलान भगवान पता नहीं क्या क्या नाम रखे, कोई अल्लाह ताला के साथ उसकी बादशाहत में शरीक है ही नहीं। तो आपने शिर्क की नफी कर दी, किसी तरह भी कोई शरीक नहीं, आपने अल्लाह ताला के लिए औलाद की नफी कर दी, तो ना उसकी औलाद है ना उसका कोई शरीक है। वलम यकुल लहू वलीयुम मिन अदुल, और उसका कोई वली भी नहीं है, कोई हामी कोई उसका मददगार, कोई उसके कामों के अंदर उसकी हेल्प करने वाला, उसका कोई वजीर हो, कोई उसे कमजोरी की वजह से कोई उसके साथ मतलब हेल्पर साथ लगा हो। देखे ना जैसे हमें हमें 1000 दफा मशवरा करने की जरूरत होती है, कोई कोई कुछ भी नहीं करता फिर भी हम कहते हैं नहीं मुझे तसल्ली के लिए मेरे साथ रहो, कोई साथ किसी के साथ की जरूरत होती है, नहीं अल्लाह ताला को किसी वली की किसी कमजोरी की वजह से जरूरत नहीं है। तो क्या क्या नहीं, वलद सी का भी इनकार, औलाद का भी इनकार, शरीक का भी इनकार और वली का भी इनकार। ठीक है, अब ये कह देना कि अल्लाह ताला के जो है ना वो उसके साथ फलां भी है, वो भी उसके साथ किसी चीज में शामिल है जो के सेहत दे सकता है, या फलां है जो औलाद दे सकता है, या फलां है जो हमें रिस्क पहुंचा सकता है, किसी और से भी मांग लें, किसी कोई और भी है जो उसके साथ किसी चीज में इख्तियार रखता है, तो इस सब की नफी हो गई यहाँ। अल्लाह ताला को अपने लिए सबसे ज्यादा जो बात पसंद है ना वो तौहीद की डिक्लेरेशन है, कि इंसान तौहीद बयान करे अल्लाह की, और इसमें तौहीद बड़ी खूबसूरती से बयान हुई भी है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई चीज ना नहीं भी यानी कोई चीज मुआफिक या कोई चीज जैसे एक्सपेक्टेड थी या जैसे थी उस तरह से नहीं भी हुई तो तब भी क्या फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल, यानी इंसान फिर इसका मतलब है कि जब ये कह देता है ना हर हाल में ही अल्लाह का शुक्र है, तो इसका मतलब है कि चाहे मुझे ये फैसला पसंद हो ना हो, ये चीज पसंद आए ना आए, ये जो कुछ हो गया ये नहीं भी सही हुआ, लेकिन मैं अल्लाह के हर फैसले पे राजी, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए, हर हाल में ही मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तो आपने अपनी रजा बता दी ना कि मैं राजी हूं अल्लाह से, वकबिर हूं तकबीरा, और बड़ाई बयान कर, उसकी बड़ाई बयान करना पूरी तरह, तकबीर पढ़े तो ये तकबीर भी कैसे पढ़ेंगे, अल्लाह की बड़ाई कैसे बयान करेंगे, किस तरह से इंसान, एक तो वैसे अल्लाह ताला की बड़ाइयां बयान करना, अल्लाह का जिक्र बुलंद करना, उसके अहकामात को मानना, ये उसको बड़ा मानना है ना, बड़ा उसको मानने, अपनी जात पे भी मैं बड़ा मानूं, अपने घर में भी अल्लाह को बड़ा मानूं, अपने बिजनेस में भी अल्लाह को बड़ा मानूं, कि मैंने जो जिसको बड़ा मानते हैं उसकी मान के चलते हैं ना, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी उसको बड़ा मानूं, अपनी हुकूमतों में भी उसको बड़ा मानूं, ये होता है बुलंद करना। ये नहीं सिर्फ बुलंद करना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तस्बीह मैंने कर ली आज, एक अल्लाह अकबर की कर ली, एक अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने अल्लाह को बड़ा ही नहीं बनाया। अल्लाह बड़ा है हर एक चीज के अंदर, मेरी मेरी अपनी जात भी कुछ नहीं, ये चीज है अल्लाह अकबर है, ये अल्लाह ताला को अकबर बनाया क्या? आपके घर में क्या अल्लाह अकबर है, या बच्चों की मर्जी चल रही है, उसकी मर्जी चल रही है, फलां की मर्जी, आपकी अदालती निजाम है, अदालतें हैं आपकी, उन जिनमें फैसले होते उनमें अल्लाह अकबर है हा? आपके बाजारों में अल्लाह अकबर है, इकोनॉमी में अल्लाह अकबर है, तो हर जगह पर अल्लाह ही का नाम बुलंद होना चाहिए, अल्लाह ही बड़ा है, उसको बड़ा समझे। जब बड़ा, जब आपके जहन के अंदर यह होगा कि बड़ा अल्लाह है, मैं नहीं हूं, बड़ा अल्लाह है, मेरी फैमिली नहीं है, बड़ा अल्लाह है, ये हुकूमती जो निजाम बनाया हुआ ये नहीं है, तो फिर अल्लाह की चलेगी ना। जब अल्लाह ताला को बड़ा ही ना समझा तो फिर मेरी भी चलेगी, उसकी भी चलेगी, उसकी भी चलेगी। अल्लाह ताला को तो फिर आपने सोचा वो तो मस्जिद में ही बस बड़ा है, बाकी जगहों पे मैं खुद ही बड़ी हूं। नहीं, सारी जमीन ही अल्लाह की है, सारी जमीन, जिस जो मालिक है कि नहीं है जमीन सारी अल्लाह की, तो फिर जो मालिक है उसी का नाम बुलंद होना चाहिए ना, उसी का कानून चलना चाहिए ना, उसी का हुक्म चलना चाहिए ना, ये उसका हक है, वो कुछ भी कहे। अव्वल तो उसकी हर बात हिकमत पे मबनी, हर बात इल्म पे मबनी, हर बात हमारे फायदे की, हर बात है जो हक है, सही है। लेकिन लेकिन मैं ये वैसे कहती हूँ एक बात, कि मसलन है कि मैं अपने घर के मालिक हूं, अब मैं को घर को तोड़ना शुरू करना, मैं फोड़ना शुरू कर दूं, कुछ उसको नुकसान करना शुरू कर दूं, आप फिर भी नहीं मुझे पूछ सकते, क्योंकि आप कहते हैं नहीं जी मालिक है, जो मर्जी करे अपने घर, कुछ उल्टी सीधी उसकी डेकोरेशन कर दूं, उल्टा सीधा पेंट कर दूं, आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप कहेंगे नहीं जी ये मालिक है। अल्लाह ताला तो कोई बेकार काम करता ही नहीं, उसका कोई काम आबस नहीं। वो वैसे मैं कहती हूँ, अगर वो कर भी दे कोई ऐसी बात, कोई कह भी दे, तब भी उसका हुक्म मानना जरूरी है, हालांकि वो उसकी तो कोई बात ऐसी है भी नहीं, फिर भी हमारे एतराजात खत्म नहीं होते, फिर भी हम अल्लाह का निजाम नहीं चाहते, औरों का निजाम चाहते हैं, फिर भी हम कहते हैं कानून चलेगा तो इंसानों का चले, ब्रिटिश का कानून चले, उसका कानून चले, अल्लाह का कानून पता नहीं हमारी साथ कोई ज्यादती हो जाएगी, हम इस मुल्क में रहते हैं यहाँ, ये यहाँ पे अल्लाह का कानून नहीं चलता, यहाँ पे तो उनका कानून चलेगा, तो हम वो वाले कानून के मुताबिक, इसलिए कि हमें कोई फायदे मिल रहे होते हैं, हम उनको लेना चाहते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि अल्लाह को अकबर ने, ठीक है उन्होंने कानून बनाया हुआ है, आप जिस मुल्क में रहते हैं आप उसके कानून को देखते हैं, लेकिन जहां पे वो कानून अल्लाह की बात के अगेंस्ट जा रहा, लेकिन हमारे फायदे में चूंकि जा रहा है, तो हम उस कानून को बड़ा फायदा उठाते हैं उससे। तो जमीन जब अल्लाह की है तो मर्जी भी अल्लाह ही की चलनी है, ठीक है, हुक्म भी अल्लाह ही का चलना है, ये जमीन मेरी और आपकी नहीं तो लिहाजा इस चीज को समझना चाहिए कि अल्लाह की बड़ाई बयान करना क्या है, अल्लाह को बड़ा करना क्या होता है, और हम ये जो कुरान पढ़ रहे हैं तो अब ये भी अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना है, अल्लाह को बड़ा मानना है, तो तभी उसका कलाम पढ़ रहे हैं ना, वक्त दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, आप इतनी देर के लिए बैठते हैं, इसको समझने में अपना जहन लगा रहे हैं, अल्लाह को बड़ा समझाए ना, तो इसी तरह ये भी तहिया करें कि मैंने अल्लाह का नाम बुलंद करना है खुद भी, और मैं नियत करती हूँ कि दूसरी जगहों पे भी अल्लाह ही का नाम बुलंद हो, और इसके लिए मैं इस कुरान पाक के मिशन को लेके आगे चलूं, इसको भी आगे पहुंचाऊं, इसको भी आगे लोगों तक इसका मैसेज दूं, ताकि अल्लाह ही का नाम बुलंद हो, खुद ब खुद तो नहीं ना हो जाएगा अल्लाह का नाम बुलंद, कोई कोई तो इस काम को आगे लेके चलेगा ना, अब जब अल्लाह के अहकामात को उसके कलाम को आगे पहुंचाएंगे तो वहां पे भी अल्लाह का नाम ही बुलंद होगा। तो अल्लाह के कुरान को आम करना, ये इरादा कर ले, नियत कर ले, अपनी जिंदगी का गोल बना ले, तभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, तभी ये हुक्म माने भी जाएंगे, जब पता ही नहीं कि क्या है तो अल्लाह ताला के हुक्म कौन मानेगा, अल्लाह को कौन बड़ा बनाएगा, ठीक है, तो इसको पहुंचाएं, अपने घरों में भी बताएं, अपने प्यारों को बताएं, अल्लाह के कलाम से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करें इस तरह से। तो बड़ी प्यारी आयत है और बहुत डेप्थ है इस आयत के अंदर, अगर इसको इसकी तफसीर करने लगे तो बहुत लंबी तफसीर हो जाए, लेकिन अगर आप इतनी बात को समझ गए तो इंशाल्लाह ताला एक मिशन के साथ आप उठेंगे कि अल्लाह ही को मैंने बड़ा बनाना है, और अपने अपनी जिंदगी में भी, और यही कोशिश करनी है कि इस जमीन पे भी अल्लाह ही का नाम बुलंद रहे हमेशा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا